लेट्स स्टार्ट।
अजय भैया,
हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पिरामिड टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड अर्निंग्स कॉन कॉल फॉर Q2 FY24। वी हैव विद अस ऑन द कॉल टुडे मिस्टर विजय कुमार अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन ऑफ द कंपनी, एंड मिस्टर जय प्रकाश अग्रवाल, होल टाइम डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। I must remind you that the discussion on today's call may include certain forward-looking statements and must be therefore viewed in conjunction with the risks that the company may face. I now request the management to take us through the company's business and financial highlights, post which we can open the floor for Q&A. Thank you, and over to you, sir.
Yeah. Hi, good afternoon,
Good
everybody.
afternoon.
Thank you for joining us on Q2 earnings con call. Hope you had a go through our investor presentation already uploaded on the exchange. So to those who are new, let me just brief about us. So Pyramid Technoplast was founded in the year 1997, stands as a prominent industrial packaging company distinguished for our specialization in polymer-based molded products with a core focus on producing rigid intermediate bulk container, polymer drums, and mild steel drums. So giving a total packaging solutions to our customers under one roof. We serve diverse customers such as chemical, agrochemical, specialty chemical, pharma chem industries, oils, paints, etc. Our operations spans across seven advanced manufacturing units strategically located across key regions. Now let me run you through a couple of updates for the quarter and H1 FY24. In our continual pursuit of innovation and capacity enhancement, we are happy to announce some recent developments. As line one of the IBC plant at Unit 7, which was commissioned with a capacity of 120,000 units a year and got operational in September 23, now is currently operating at 30% capacity. So going forward, our strategy will be to initiate line two of IBC at Unit 7 once we achieve 50% of the existing capacity. Simultaneously, we have significantly increased the capacity of metal drums production from 30,000 to 50,000 through automation at our existing capacity. And we have further plans to expand this capacity to 90,000 by adding some more automation and machineries in the existing unit. Recognizing the limitation of space in Unit 6, wherein we have fully automated the facility for MS drum, we are shifting the operations to Unit 8 to accommodate the expansion of 90,000 barrels mark, concurrently introducing advanced machinery and technology. We are actively progressing with the CapEx initiative and construction work at Unit 8, which has already started. The estimated construction cost is rupees 8 crore. We are aiming to shift metal drum capacity from Unit 6 to Unit 8. The vacated Unit 6 will be utilized to expand our existing HDPE drum capacity by organic growth with new industries coming up. At the same time, we have initiated plan to merge Unit 7 and Unit 8 into one unit to achieve operational efficiency. So the merged Unit 7 and Unit 8 will host metal drum and IBC units. At the same time, we have also initiated to do some backward integration and have also plans to implement a pallet project, which we are currently outsourced right now. This will result in substantially cost savings. We are still on lookout for a suitable location for proposed Unit 9 as per geographical location advantage. Our commitment to progress is evident not only in our infrastructure but also in our workforce. So now with the capacity increasing, our team size has also grown to 465 employees and more from 450 numbers earlier. A testament to our continuous dedication to talent development and resource augmentation. So under new product development, we have designed a We have just launched a new variant of IBC, which has a plastic pallet to it. So adding a new product in the existing IBC facility. This product has been gaining traction among our client base. Pyramid's approach rests on a foundation of cutting-edge technology, customer-centric operations, and an unyielding commitment to growth and innovation within the industrial packaging sector. Moving to the quarterly performance, for the quarter, our revenue stood at 132 crore, up by 20% year-on-year, with 48% of the revenue coming from the polymer drums, which including the trading income has led to a total contribution of 56%, followed by 33% contribution from IBC and 8% from MS drum segment. Balance 10% contributed by polymer trading business. Gross profit for the quarter stood at ₹34.86 crore, up by 15% quarter on quarter and 25% year on year. Gross margin stood at 26%. EBITDA for the quarter stood at 12.85 crore, up by 2% quarter on quarter and year on year it remains same. EBITDA margin stood at 10% as some major expenses were allocated towards the maintenance and upkeep of our existing facility, upgrading the machinery and some renovation work which is being done, which were expensed in this quarter. Profit after tax for the quarter stood at ₹7.85 crore. We are also happy to announce that we have paid off majority of our long-term debt and now have a net cash balance sheet. The macro environment currently aligns favorably with our growth initiatives and remain committed to delivering results in line with our guidance. Once again, I would like to thank each one of you for your immense support, and I look forward to your continued interactions. With this, I would like to open the floor for questions and answers. Thank you so much.
Thank you, sir. We can now open the floor for questions. So whoever has a question, please raise your hand. And please also mention your firm name before starting. Thank you. We have the first question from Mr. Parth Kotak. Please go ahead.
Hi, Bijay Kumar, sir. Thanks for taking my question. I'm Parth here from Alpha Plus Capital. I just have two questions. One, I think you previously mentioned that our EBITDA margins are stable at 10%. I would be under the impression, although H1 margins are slightly lower, we would end the year at our long-term average of around about 10%. Is that the right understanding?
Yes.
Ji,
10% average, matlab ye
chal hi raha hai na thoda.
It will be around 10% only.
Okay, theek hai. और सर दूसरा क्वेश्चन अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में हमने मेंशन किया है हम 40 टू 50 करोड़ का केपेक्स कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट थ्री इयर्स फॉर यूनिट 8 एंड 9 कैन वी गिव एन इंडिकेटिव कैपेसिटी मतलब 3 साल के बाद अपना इंडिविजुअल बिजनेसेस में क्या कैपेसिटी होगा आफ्टर द केपेक्स इज ऑन स्ट्रीम
देखिए आज के डेट में आईबीसी की हमारी 30,000 कैपेसिटी है जो 50,000 पे हो जाएगी उससे ज्यादा हो सकती है अभी इतना तक को समझ रहे हैं कि उस समय जो कैपेसिटी होगी 50,000 आईबीसी होगी 1,00,000 एमएस ड्रम होंगे आगे 2 साल का बता रहा हूँ मैं आपको
व्हेन द यूनिट 9 एंड यूनिट 8 फुली कमीशन्ड सो दिस कैपेसिटी व्हाट वी आर सेइंग इज ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट 8 एंड 9 वंस इट इज 100%
अरे एचडीपी ड्रम का 4,50,000 ड्रम पर मंथ ये कैपेसिटी हो जाएगी
ठीक है सर सर मुझे ये भी हेल्प कीजिए ना इन द सेंस आईबीसी का आपने बताया अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में यूनिट्स में हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि 6,00,000 टन का कैपेसिटी हो जाएगा आफ्टर द यूनिट इज कमिशन
50,000 आईबीसी पर मंथ की कैपेसिटी हो जाएगी आने वाले 2 साल के बाद
इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स
इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स मतलब 6,00,000 हो जाएगा ये
6,00,000 पर ईयर
और पॉलीमर ड्रम और एमएस ड्रम्स का आप एमटीपीएम में बता सकते हैं सर जैसे अपना इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में मेंशन है मोटा मोटा
इनटू 18 इनटू 12 करीब करीब 20,000 टन हो गया ना
हां अराउंड 2000
से 20,000 टन का हो जाएगा
अराउंड 20,000 टन पर ईयर
ओके और
पॉलीमर का करीब 25,000 टन 20,000 से 22,000 पर टन पर मंथ टन हो जाएगा 22,000 टन पर मंथ पर ईयर
22,000 तो सर अपना अभी भी है, आई थिंक 22,800 टन इज व्हाट वी मेंशन राइट नाउ.
इट विल बी अराउंड 4,000 4,500 टन्स.
4,500 टन्स पर मंथ वी आर सेइंग.
पर मंथ यस.
ओके सर परफेक्ट. इफ आई हैव एनी अदर क्वेश्चंस आई विल जॉइन बैक द क्यू.
Thank you, Parth. Whosoever has a question, please raise your hand using the reaction button. We have the next question from Mr. Dipen Shah. Please go ahead. Dipen, you can unmute your line and please go ahead.
Yeah, sorry. Sir, thank you for the opportunity. I had one question about the IBC. We are probably the largest or the second largest player in India in IBC. So, sir, just ek janna tha ke aur competition ka scenario kya hai? Hum do player hi hai India mein. कि अभी और नेक्स्ट एक दो साल में काफी बड़े प्लेयर आने वाले हैं जो लार्ज कैपेसिटी सेटअप करेंगे. तो इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स कुड यू जस्ट टेल अस व्हाट वुड बी द कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी.
स्टेट में तो सर कोई नहीं है, आने के लिए तो आएंगे जरूर लोग, बड़े छोटे का तो हम नहीं कह सकते, जो आएंगे मार्केट में आएंगे. लेकिन मेरे को लगता नहीं हमारे बिजनेस में उससे कोई फर्क पड़ेगा. बार बार बोलता हूँ ये चीज, तीन चीज हमारी यदि मेंटेन रहेगी, क्वालिटी, सर्विस, प्राइस, तो हमारे कस्टमर हमारे पास सर्वाइव करेंगे. इसलिए हम दूसरे आ रहे हैं, इसके लिए हम नहीं सोचते हैं ज्यादा, अपना बिजनेस हम अपना ग्रोथ करते रहते.
ओके. और सर आपने जो देता है कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन आप कर रहे हो, तो उससे कॉस्ट में क्या फर्क पड़ेगा, मार्जिन्स पे कितना इम्प्रूवमेंट आ सकता है सर इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स.
मेरे को लगता है 1% का EBITDA जरूर बढ़ जाना चाहिए आईबीसी में.
सॉरी सर सुना ही नहीं दिया, सॉरी.
1% EBITDA प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगी हमारी उस.
अच्छा 1% तक बढ़ जाएंगे. ओके सर. ओके थैंक यू वेरी मच सर एंड ऑल द बेस्ट.
Thank you, Dipen. We have the next question from Mr. Priyank Parekh. Please go ahead.
Yeah, thanks for the opportunity. सर कैन यू थ्रो सम, मतलब ये क्वार्टर में जो रियलाइजेशन हुआ है, लास्ट क्वार्टर वी वर सेइंग कि अपना रियलाइजेशन बढ़ेगा ये क्वार्टर में गिवन द पॉलीमर प्राइसेस बढ़े, तो वो अभी दिख नहीं रहा है नंबर्स में, तो उसका रीजन सर
नहीं है सर. अब पिछले क्वार्टर में हमारा ट्रेडिंग जो था वो 26 करोड़ का था, प्रोडक्शन करके जो हमने माल बेचा था, सेल हुई थी वो 112 करोड़ की थी, और वो 26 करोड़ का ट्रेडिंग था. इस क्वार्टर में आप देखेंगे तो अपना सेल जो है वो 118 करोड़ का होगा, 6 करोड़ से सेल बढ़ी है, और लेकिन पॉलीमर का प्राइस अभी बढ़ा नहीं है. अब थोड़ा मार्केट चेंज हुआ है, अब थोड़ा ठीक हो रहा है. और ट्रेडिंग जो है इस क्वार्टर में हमारी खाली 14 करोड़ की है, तो ट्रेडिंग 11 करोड़ की कम हुई है, लेकिन प्रोडक्शन और सेल ज्यादा हुई है इस क्वार्टर में.
हाँ मतलब इस क्वार्टर में यू आर सेइंग कि हमारा रियलाइजेशन बड़ा नहीं है पॉलीमर की प्राइसेस के कॉरेस्पॉन्डिंग में.
सेम ही चल रही है, कोई ज्यादा अप डाउन नहीं हुआ है.
ओके. और ये जो अपनी जो 54 करोड़ की इन्वेंटरी है, तो वो उसमें क्या मतलब हमारा
मार्केट प्राइस है उसी से वो इन्वेंटरी का स्टॉक किया गया है.
अच्छा मतलब जो 54 करोड़ में कोई ज्यादा लॉस या गेन नहीं है. ओके गॉट इट सर. सर ये जो हमारा टारगेट है FY 2026 तक 50 करोड़ का कैपेक्स करने का, उसमें से हमने फर्स्ट हाफ में 21 करोड़ का कर दिया है राइट. तो अभी जो हमारे प्लान्स है, तो इट्स अकॉर्डिंगली 30 करोड़ का कैपेक्स का प्लान स्टिल इंटेक्ट है या उसमें अभी बढ़ावा हुआ है?
नहीं वो अभी बाकी है करने.
हाँ सो मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क कि जो अभी ये 50 करोड़ का टारगेट है उसमें दैट विल बी इंक्रीज कि वो इतना ही रहेगा,
कुछ बढ़ भी सकता है सर, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना उसमें बढ़ाएंगे.
बट दैट विल बी फंडेड फ्रॉम आवर इंटरनल अक्रूवल्स.
यस एब्सोल्युटली सर. सर ये क्वार्टर में हमारे अदर एक्सपेंसेस एकदम से बढ़ गए हैं, तो उसमें आपने टच अप ऑन थोड़ा किया, लेकिन थोड़ा वो उसमें डिटेल में बता सकते हैं?
वो देखिए ना बताता हूँ. रिनोवेशन वगैरह कराया है, मशीन वगैरह जो पुरानी थी उसको वायरिंग कार्ड दे भी, सबकी लाइफ 10 साल बढ़ गई है.
इट वाज ऑलरेडी ड्यू बट
अपग्रेड कर लिए
हाँ
सब।
सो नाउ वी हैव डन अ मेजर रेनोवेशन विद आवर प्लांट आल्सो विद आवर एग्जिस्टिंग फैसिलिटी एंड वी हैव अपग्रेडेड द मशीन्स आल्सो सो दैट वी गेट अ लॉन्गर शेल्फ लाइफ ऑफ द बिकॉज वी नीड टू कीप ऑन इन्वेस्टिंग ऑन द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी आल्सो
ओके सो इट इज काइंड ऑफ वन टाइम एक्सपेंस, मतलब हर 5-6 साल में हमने करना पड़ता है, राइट?
करेक्ट।
ओके तो वो कितना पोर्शन होगा, अभी अभी जो अदर एक्सपेंसेस है हमारे उसमें से वो कितना पोर्शन होगा, कैन वी क्वांटिफाई दैट?
तो करीब मेरे को लगता है 1.5 करोड़ के आसपास का वो है, कुछ और भी इपॉक्सी कोटिंग कराया गया, ये सब अपग्रेड, साफ कलर वलर, वो सब बहुत तरीके के खर्च हुए हैं उसके अंदर।
इट विल बी राउंड अबाउट 1.5 करोड़ इन द
ओके
करेक्ट क्वार्टर इफ यू सी।
ओके ओके गॉट इट गॉट इट।
6 करोड़ का मैंने ईपीआर लिया है, ईपीआर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो ईपीआर लाइबिलिटी जो अभी हमारे, जो हम लोग ब्रांड ओनर नहीं है, हम जिनको माल देते हैं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, वो लाइबिलिटी हमारे पर थी, तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा ईपीआर लेके ले लिया है जिससे हमारी लाइबिलिटी खत्म हो गई। अभी वो कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा तो हमको आगे 1-2 साल भी ईपीआर में कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, वो लेकर छोड़ दिया हूँ ईपीआर।
It is basically a compliance which we are doing. We
गवर्नमेंट
are
का अलग
100% we believe we should 100% compliance company. We should follow all the rules and regulation and norms.
ओके ओके दैट इज हेल्पफुल। ओके
ईपीआर भी लेके लाइबिलिटी क्लोज कर दिया मैंने 36 लाख का, वो भी उसमें है।
ओके गॉट इट। ओके ओके आई विल जॉइन बैक द क्यू। थैंक यू।
यस सर, थैंक यू,
थैंक यू। We have the next question from Mr. Vikas Kasturi. Please go ahead.
नमस्कार सर।
नमस्ते
सर, फर्स्ट क्वेश्चन, जो आपके कस्टमर्स हैं वो देश के कौन से हिस्से में है सर? वो वेस्ट इंडिया में, मतलब गुजरात में है कि कहीं और है सर?
गुजरात और महाराष्ट्र में है सर हमारे कस्टमर ज्यादा।
अच्छा, और आपकी जो प्रेजेंटेशन में आपने बताया कि आपके पास कुछ तो 40-50 ट्रक है, तो वो सब मतलब वहीं पे सप्लाई करते हैं, मतलब आपके कस्टमर्स को जो गुजरात महाराष्ट्र?
कहीं भी जाती है, लोकल में भी चलती है और बाहर भी जाती है, जहां जरूरत होती है वहां चली जाती है। वो करीब 54 ट्रक है आज के दिन।
हाँ सर। एंड सर, एनी अदर प्लान्स टू गेट इनटू अदर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लाइक आईबीसी सर?
ऐसा तो कोई नहीं सर, प्रोडक्ट तो यही अभी तक दिमाग में, इसके अलावा कुछ अभी सोचे नहीं है दूसरे प्रोडक्ट।
अच्छा सर, और थोड़ा आईबीसी के बारे में बताइए सर। सो एज फार एज आई नो, सो लाइक यू सेल इट टू अ स्पेशलिटी केमिकल कंपनी एंड दे यूज इट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दैट केमिकल।
ट्रांसपोर्ट में यूज करते हैं उसको,
हाँ सो
वो एक्सपोर्ट होता है सर, लोकल में कम होता है, एक्सपोर्ट में डिमांड रहती है, एक्सपोर्ट के जो कस्टमर है वो उसमें में राम आईबीसी में ही माल मांगते हैं, इसलिए वो आईबीसी में पैक करके बाहर जाता है, यूरोप, यूएस, सब जगह।
डाउन द लाइन इफ यू सी नेक्स्ट 3-4 इयर्स द इंडिया इज इन्वेस्टिंग टू मच ऑन फोकसिंग ऑन एक्सपोर्ट मार्केट एंड डिमांड फ्रॉम अदर कंट्रीज आर शिफ्टिंग टू इंडिया। So India's exports will gonna grow in future and that will lead to increase in capacity and demand for IBCs. So our focus will be to keep on expanding in IBCs. So this is what our plan for 2026 we have already said, as we said. So we will really have a capacity of 50,000 IBCs per month.
Okay. Sir, और ये जो IBC है ये वापस इंडिया आती है बाहर से?
नहीं नहीं सर, वो वापस नहीं आ सकती, वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत होता है, खाली आईबीसी नहीं आ सकती।
It is like a supply chain. So somebody is selling to India, they are also selling in IBCs. So somebody else says IBC is coming to India.
Acha, acha, okay. Okay, so that is why, so you can think of it like your customers need a continuous supply of IBCs.
Correct.
Okay. So packaging ke liye, okay.
Absolutely.
Sir, aur aapne ek interview mein bataya tha that you are confident of 20-25% growth for the next few years. So would this come from new clients or new products, new geographies? So mota mota kahan se aayega sir, ye kaise aayega?
और नए लोग जाएंगे उससे आएगा, वो दो कारण से आएगा।
ओके ओके थैंक यू सर, दैट्स ऑल आई हैड, आई विल कम बैक इन द क्यू।
ओके थैंक यू,
थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम हार्दिक पारे, प्लीज गो अहेड।
हाय, गुड आफ्टरनून सर। Sir, so first question was that we like to operate plants at 75-80%, right? So new line that we've opened in plant 7, How much time should we take to get to that 75-80% capacity utilization?
लगभग 9 से 12 महीने लगते हैं एक प्लांट को, यदि नया प्लांट आता है और आईबीसी जैसे में तो 9 से 12 महीने में हमारी कैपेसिटी भी तक फुल होती है। एचडीपी ड्रम का तो सेकेंड डे से हमारा पूरा चालू हो जाता है, एमएस ड्रम में भी हमारे को लगता है 6 महीना लगेगा पूरी कैपेसिटी यूज होने।
ओके और सर अपना ये जो वीव एक्सपांडेड इनटू मेटल ड्रम्स जो ऑटोमेशन करके, सो दैट वीव डन इन अ करंट मतलब ऑनगोइंग प्लांट और इन अ न्यू प्लांट?
ऑनगोइंग प्लांट है, उसको ही कैपेसिटी और नई मशीनरी ऐड करके उसको
रिकमेंडेशन किया जा रहा है। इन आवर ऑनगोइंग प्लांट वी हैव इंक्रीज्ड बाय ऑटोमेशन इन एग्जिस्टिंग प्लांट बाय फ्रॉम 30,000 टू 50,000। सो नाउ विद वी विल वी हैव ऑर्डर्ड सम न्यू मोर मशीन्स with advanced technology that we are going to set up in unit 8 and we will totally shift our operations of MS drum in unit 8 to accommodate the exist the extra capacity. You understood?
So sir, 30,000 to 50,000 abhi purane plant mein automate karke kiya hai na?
Yes, we have already achieved that.
ओके एंड बाकी का जो आई थिंक 90,000 का गाइडेंस दिया है,
90,000 का वो मेरा जो नई लोकेशन में नई मशीनरी और ले रहे हैं वो नई उस जगह वहां पर जगह नहीं है तो यूनिट 8 जो बड़ी जगह है 10,000 मीटर की वहां पर शिफ्ट हो जाएगा वो
तो सर वो आर वी कॉन्फिडेंट दैट इन 6 मंथ्स वी कैन यू नो गेट टू 90,000 प्लांट्स फ्रॉम 50,000?
6 महीने में तो सर वो प्लांट बनेगा और मशीन लगेगी।
ओके ओके और सर I'm sorry interrupted, please.
बोलिए।
Okay, sir, last question. आपने एक last phone call में 1,000 crore with 15% PBT का एक guidance दिया था long term. So are we still on that?
हम हजार लोग कुछ आप पूछ रहे हैं, मतलब मैं कोशिश करूंगा कि 1,000 crore पे जाऊं। मैं कोशिश क्यों नहीं करूंगा सर कि मैं 1,000 crore पे जाऊं।
Okay, sir. Okay. Thank you.
Thank you.
Thank you. Next question we have from Rihan. Please go ahead.
Hi, thank you for taking my question. Sir, I just had a couple of questions. First is the reusability of each product, like the chemical companies or the pharma, your end users, why would they reorder, say, even if they're buying, say, 100 drums or number of pieces, they can reuse some of it if it's not a long-term storage material. So can you share some light as to your reorderability? Like reusability or reorderability in this case?
एक बार केमिकल पैक होने के बाद उसका रीयूज नहीं होता है ड्रम का सर। एक बार केमिकल यदि पैक हो गया और वो चला जाता है ट्रांसपोर्ट में तो वो 1,000 किलोमीटर दूर भी चला जाता है, और फिर एक बार जब केमिकल भर लिया उसमें दूसरा प्रोडक्ट डालेंगे तो उनका प्रोडक्ट खराब हो सकता है, इसलिए रीयूज नहीं हो पाता है।
बट आई एम श्योर देयर मस्ट बी अ सेकंड हैंड मार्केट फॉर द सेम।
वो अलग है, उसके लिए अलग केमिकल अलग बनाने वाले हैं, सेकंड हैंड मार्केट अलग है पूरा का।
Okay, and second is just wanted to get the numbers right on your current capacity, like after commissioning unit 8 and unit 9. You said 50,000 IBCs per month, and can you share for metal drums and the other drums, polymer drums? I wasn't audible.
नहीं बोला मैंने कि कितनी capacity होगी, अभी तक की जो capacity है वो 30,000 IBC की है।
नहीं नहीं after commissioning unit 8 and unit 9.
Unit 8 जो चल रहा है वो हो रहा है, उसमें metal drum केवल plant आ रहा है। मेटल ड्रम की कैपेसिटी में 90,000 पर मंथ की हो जाएगी, जो आज के डेट में अभी 50,000।
ओके एंड आफ्टर एडिंग यूनिट 9 एज वेल,
अब उसमें जो जगह कितनी मिलती है और उसमें तुम तीनों प्रोडक्ट ही डालेंगे तो उसमें जब जगह मिल हो जाए उसके बाद बताऊंगा।
ओके थैंक यू।
थैंक यू। एनीवन हु विशेस टू आस्क अ क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड यूजिंग द रिएक्शन बटन। Next question is from Mr. Roshan Shetty. Please go ahead.
Yeah, hi. Roshan this side. अच्छा मेरे को दो तीन चीज पूछना था। एक तो ये स्पेशलिटी केमिकल्स का जो अभी फिलहाल प्राइस डाउनफॉल आ गया है बिकॉज डिमांड नहीं है, प्राइसिंग मार्केट क्रैश हो गया है, तो ये सब स्पेशलिटी में केमिकल्स में मेजर इश्यू आ गया है, इसके वजह से कुछ हमारा डिमांड में कुछ इफेक्ट होगा?
देखिए उनके फैक्ट्री उनकी चल रही है, उनको लॉस प्रॉफिट जो हो रहा है वो स्टॉक के कारण हो रहा है, तो उनके प्लांट चल रहे हैं तो उनको प्लांट चल रहे हैं तो हमारा तो माल उनको लग ही रहा ना, उनके स्टॉक लॉस थोड़ी बहुत 5% 10% डिमांड कम बेसी हुई है, लेकिन हम लोगों को फील नहीं हो रही है कि कोई डिमांड कम हुई है केमिकल मार्केट।
नहीं, मेरा बोलने का ये था कि इसके वजह से हमको कुछ प्राइसिंग प्रेशर आएगा, बिकॉज अगर
हम लोग का प्राइसिंग एकदम फिक्स है, उनके नॉर्मल प्रॉफिट में ही काम कर रहे हैं, वो फिक्स ही रहता है, उसमें कोई बार्गेनिंग नहीं है, वो फिक्स जा रहा है।
ओके, तो ये जो अदर एक्सपेंस का वजह से बिकॉज ऑफ दिस अदर एक्सपेंसेस हमारा इबिटा मार्जिन मार्जिन कम हो गया है, तो क्या रन रेट लू अदर एक्सपेंसेस का गोइंग फॉरवर्ड, या वन टाइम जैसे?
ये वन टाइम था सर, ये 5 साल में 6 साल में कभी एक बार होता है, वो ऐसा नहीं है कि रोज।
तो
क्वार्टर
फिर
पानी खत्म हो गई, वो आगे क्वार्टर बराबर।
तो नेक्स्ट क्वार्टर क्या लू एवरेज अदर एक्सपेंसेस का अगर देखना है तो?
अदर एक्सपेंसेस कुछ मेरे हिसाब से मैक्सिमम 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच में आएगा, उससे ज्यादा कुछ इतना बढ़ेगा नहीं, तो कम हो जाएगा। दो इस बार से 2 दिन बढ़ा है, वो कम हो जाएगा।
ओके, बिकॉज ये इसके वजह से ही मार्जिन कम हो गया, सो इफ ये
कम
हो
जाता।
ठीक है, ओके, थैंक यू।
थैंक यू। एनीवन हु विशेस टू आस्क अ क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड। We have the next question from Mr. Priyank Pare. Please go ahead.
या सर, ये अदर एक्सपेंस पे ही पूछना था, जो अभी 16.4 करोड़ है फॉर दिस क्वार्टर, एंड वी आर सेइंग कि 1.5 करोड़ जितना दैट वाज वन टाइम सॉर्ट ऑफ एक्सपेंस, तो अभी गोइंग फॉरवर्ड
आसपास सब ऐसा है, अलग अलग टाइप से बनाए, 1.5 करोड़ उस पे लग गया, 36 करोड़ का है, मैंने 1 लाख का है, बीपीआर लिया, इस टाइप से जो भी की चीजें चल रही थी अप्रैल से, वो सब अभी बुक होके खत्म हो गई है।
हाँ, तो मतलब जो प्रीवियस पार्टिसिपेंट्स ने ये जो क्वेश्चन पूछा कि उसी के लाइन पे, मतलब कैन वी से कि गोइंग फॉरवर्ड हमारा अदर एक्सपेंस 14 करोड़ के आसपास होगा, या उससे ज्यादा या उससे कम, क्या होगा मतलब?
2.5 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा, 3 करोड़ का एक्स्ट्रा हुआ है, उसमें से 2 करोड़ रुपए कम हो जाएंगे अगले क्वार्टर में।
ओके, 2 करोड़ रुपया कम हो जाएगा, ओके, गोट इट। तो 12.6 करोड़, ओके, ठीक है, गोट इट। तो वो जो मतलब प्रीवियस क्वार्टर में 13 करोड़ था, वही लाइन पे रहेगा, राइट?
जो इंक्रीजमेंट, जो थोड़ी बहुत सैलरी हुई है, ये हुई है, जो सेल के हिसाब से खर्चा बढ़ता है उतना ही रहेगा।
ओके, समझ गया समझ गया। ओके, इन जो अपना ये ग्रोस प्रॉफिट इस बार 32.9 करोड़ हुआ है, तो उसमें वॉल्यूम का कितना कंट्रीब्यूशन है, और रियलाइजेशन बढ़ा है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, वो क्वांटिफाई कर सकते हैं सर?
समझा सर, आपका क्वेश्चन नहीं समझा आपका।
जैसे कि हमारा से फॉर एग्जांपल ग्रोस प्रॉफिट ये क्वार्टर में 32.9 करोड़ का है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 29.3 करोड़ का था, एंड उस और लास्ट ईयर के ये सेम क्वार्टर में 27.5 करोड़ का था। तो सर, जो ये 32.9 करोड़ बढ़ गया है, तो उसमें वॉल्यूम से कितना बड़ा है और रियलाइजेशन बढ़ने से कितना बड़ा है, उस पर हम बाइफर्केशन कर सकते हैं?
ये वॉल्यूम से ही बढ़ा है मैक्सिमम, जो भी बढ़ा है, जो वॉल्यूम मार्जिन, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ती है वही मार्जिन बढ़ रही है, कोई ऐसा नहीं है कि जो मैं पर आईबीसी 100 रुपया कमा रहा था तो अभी कोई 110 रुपया कमाने लग गया हूँ, ऐसा नहीं, जो भी मार्जिन बढ़ी है वो वॉल्यूम से ही बढ़ा है।
ओके, गोट इट गोट इट।
प्रेजेंटेशन में हमने ब्रिज दिया हुआ रेवेन्यू का,
सो रेवेन्यू का है, हाँ आई गोट इट, रेवेन्यू का है, लेकिन ओके, सो हाँ, तो दैट मतलब जो अपना जीपी बढ़ा है, दैट इज ओनली फ्रॉम दैट वॉल्यूम, राइट?
वॉल्यूम से ही बढ़ा है,
वॉल्यूम से ही बढ़ा है केवल।
ओके, गोट इट गोट इट, ओके, थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।
Thank you. Next question is from Mr. Roshan Shetty. Please go ahead.
Sir ji, sorry, वापस आने के लिए दो तीन पूछना था कि अभी going forward कुछ risk देख रहे हैं क्या हमारे business में?
नहीं सर।
Because आपने जो आपके IPO में बोला था, जहां भी interview बोला था, because our business is all volume driven business. तो volume impact कुch hai, because it's a very simple business. और वॉल्यूम नहीं होगा तो मतलब प्रॉफिट नहीं आएगा, तो कुछ रिस्क या कुछ डिटेल शेयर कर सकते हैं कैसे वॉल्यूम किधर से आएगा, कैसा है फ्यूचर में?
वॉल्यूम मशीनरी एड होती है, उससे वॉल्यूम मिलता है, नया प्लांट डालते हैं वहां से वॉल्यूम मिलता है, नया लोकेशन में जाएंगे वहां से वॉल्यूम मिलेगा, मशीनरी एड करते हैं उससे वॉल्यूम मिलती है।
या सो बट अभी कुछ शेयर कर सकते, कहां से डिमांड आ रहा है वैसा कुछ?
सब जगह डिमांड है साहब, हमारे को तो डिमांड का कोई इशू ही नहीं है। आज भी मैंने 200 लीटर की एक मशीन कहीं से बात कर रहा हूँ, लेऊंगा डालूंगा, मेरे पास जगह है, डाल रहा हूँ। मेरे पास जो माल बन रहा है वो शाम में सब डिस्पेच हो जाता है, हमारे पास वॉल्यूम का कोई इशू नहीं।
अच्छा, तो मुझे एक साइन बता दीजिए, अगर कुछ रिस्क दिख रहा है आपके बिजनेस में तो कहाँ, मतलब कैसे समझू, मतलब कहाँ कुछ
आज 30 साल से 25 साल से सुन रहा हूँ, नहीं समझ आया आज तक। कितने बैंक वाले पूछते होंगे, कितने लोग पूछते हैं,
ठीक
याद
है।
आ जाए तो वैसा ही बोलूंगा, रिस्क कर, बाकी कुछ है नहीं।
नहीं, आप तो एक्सपर्ट ही है, जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड बिजनेस बेटर, इन अ बेटर वे। ठीक है, ओके, थैंक यू।
थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर शिव प्रकाश, प्लीज गो अहेड।
Hi sir, actually I have a query regarding the cash conversion ratio. So in last 5 years, if we compare the EBITDA to CFO, cash flow from operations, so we got only 40% of conversion ratio. So is there any specific reason for converting the cash from EBITDA, like since because we are supplying to a large company or something else, any particular reason for that? Because the cash flow from operation is low compared to EBITDA in the last 5 years. So that's my query. First query.
Can you repeat the question? Because we did
आवाज
not hear you properly.
Okay, sir. Could you hear me now?
Very slow. Hello.
Okay, can you hear me now?
Yeah, tell me.
Yes, sir. Actually, in last 5 years, if you compare the EBITDA, that is, it is around 163 crores. But
Correct.
while checking with the cash flow from operations, we got only 69 crores. So, is there any particular reason for converting this EBITDA to cash? Like we are having less cash compared to EBITDA. So, is
Actually,
this because of any we are supplying for large companies because we are getting delay in receiving the cash, or anything, any particular reason for that?
ये मैं अपने सीएस से, मैं भी समझा नहीं हूँ सर, मैं देख के आपको इसको बाद में जवाब देता हूँ, 1 घंटे के अंदर चेक करवाता हूँ क्या है इसका
यार
मतलब।
श्योर, वी विल गेट बैक टू यू विद द कैलकुलेशंस।
हाँ
ओके ओके ओके।
थैंक यू।
थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर निखिल अग्रवाल, प्लीज गो अहेड।
सर, कैन यू हियर मी?
जी सर, नमस्ते, बोलिए सर।
नमस्ते। मुझे बस समझना है, आपका ये मार्जिन प्रोफाइल अभी 8-9% के आसपास है, तो इसमें जो आईबीसी ड्रम्स है और बाकी के जो प्लास्टिक ड्रम्स एंड अदर टाइप्स ऑफ ड्रम्स दैट वी आर मेकिंग, मार्जिन प्रोफाइल कैसे वेरी करता है प्रोडक्ट वाइज?
देखिए, आईबीसी में 10% का आता है प्लास्टिक ड्रम, और मेटल ड्रम में 5% का आता है
नेट प्रॉफिट?
नेट प्रॉफिट बता रहा हूँ मैं आपको यार।
ओके, दिस इज कन्वर्जन मार्जिन, और या फिर इसमें
कन्वर्सन के पर यूनिट कह दीजिए, जो भी है नेट प्रॉफिट जो सेल के ऊपर जो आता है वो यही है, इसको जो भी आप कह सकते हैं। जो हम तो कन्वर्ट ही कर रहे हैं, रॉ मटेरियल लेके ड्रम बनाते हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं आईबीसी।
कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होते हैं हमारे कस्टमर्स के साथ? इज इट
ईयर चल रहे हैं साहब, ईयर टू ईयर फिक्स है, वो वैसे ही चल रहा है, कोई डेली बेसिस पे कुछ नहीं हो रहा। जो भी कस्टमर है लॉन्ग पीरियड से, उनका कन्वर्सन फिक्स है, 20 रुपया किलो, 25 रुपया, या पर पीस 1,000 रुपया, 800 रुपया, उस हिसाब से माल जा रहा है।
ओके, सो मतलब ऑयल प्राइस से लिंक्ड है ये? ऑयल प्राइस अगर बढ़ता है तो आपका
उससे लिंक
कुछ
रिलायंस के प्राइस से लिंक रहता है, रिलायंस का जो प्राइस एक तारीख का होता है उससे लिंक होता है।
रिलायंस का जाना का प्राइस? ओके, राइट
HDB prices on
राइट
basis
राइट
is linked with that.
ओके, सो द मार्जिन परसेंटेज विल रिमेन द सेम, मोर और लेस द सेम, और इज इट द पर केजी द प्राइस प्रॉफिट रिमेन द सेम? सो इज इट द पर केजी प्रॉफिट रिमेन्स द सेम और द
पर
मार्जिन
केजी इट विल
परसेंटेज
रिमेन द सेम,
पर केजी रिमेन्स?
या बट देयर इज अ लिटिल बिट टाइम लैग बिटवीन यू नो ट्रांसफर, बिकॉज इफ से कमोडिटी प्राइस, रॉ मटेरियल प्राइस ड्रॉप्स यू नो ड्यूरिंग द मंथ, इट विल बी पास्ड ऑन ओनली यू नो नेक्स्ट मंथ और समथिंग लाइक दैट।
ओके, एंड हाउ डू यू सी द कॉम्पिटेटिव इंटेंसिटी इन द प्रोडक्ट्स अपार्ट फ्रॉम आईबीसी? वहां पे इज इट मोर कमोडिटाइज्ड इन नेचर एंड इज इट मोर कॉम्पिटेटिव?
अरे प्रोडक्ट अच्छे हैं साहब, ऐसा नहीं है। ड्रम भी जो है उसको लगता है कि बहुत ईजी है, जो लोग बनाते हैं वो नहीं बना पाते हैं ढंग से, और इसलिए उनको प्लांट भी बंद करना पड़ता है। सारे प्रोडक्ट में क्वालिटी है और सब क्वालिटी के हिसाब से ही सेल होता है, और टीम है उसमें कोई इशू आती नहीं है, इसलिए भगवान की दया से कि ऐसे में ग्रोथ हो रहा है।
दैट इज व्हाई वी आर आवर वॉल्यूम्स आवर
डेली
कैपेसिटी इज
बेसिस में
इंक्रीजिंग।
हम मशीन ऐड कर पा रहे हैं, माल बेच पा रहे हैं, कोई कभी स्लो जैसा फील नहीं होता।
ओके, जो कस्टमर्स को अपने आईबीसी ड्रम्स आईबीसी कंटेनर सेल कर रहे हैं, इज दैट पर्टिकुलर कस्टमर इंडस्ट्रीज ग्रोइंग फास्टर? सो पहले तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को हम कर रहे हैं
नहीं
एंड
नहीं
आर दे ग्रोइंग फास्टर?
जो फास्टर है, जो आप लोग बोल रहे हैं साहब, क्या है, सारे जगह हम सुन रहे हैं आज बहुत दिन से, जब से मैंने आईपीओ के लिए आया कि केमिकल मार्केट स्लो है। लेकिन केमिकल मार्केट मेरा आज भी कहना है कि हो सकता है कुछ स्लो होगा, लेकिन वैसा कुछ स्लो है नहीं। जो भी हमारी सेल में उसका कोई फर्क नहीं आ रहा है, हमारे जो भी कस्टमर है उतना ही अभी भी वो ले रहे हैं माल, और फास्टर ग्रोथ वगैरह तो नहीं है कुछ, उनकी डिमांड चल रही है, वो ले रहे हैं और जा रहा है।
मतलब आईबीसी किसी अदर
क्या
प्रोडक्ट को रिप्लेस कर रही है या फिर ऑलरेडी?
है बाहर आईबीसी में, क्या है उनका एक्सपोर्ट में डिमांड रहती है, तो एक्सपोर्ट में ज्यादा यूज,
राइट,
तो उनको कस्टमर बोलते हैं कि हमको आईबीसी में दो, तो वो आईबीसी ले रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे मार्केट कन्वर्ट भी हो रहा है, जो ड्रम में ले रहे थे एचडीपी में एमएस में, वो सब धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है आईबीसी में, इसलिए आईबीसी ज्यादा हो रही है। लेकिन ग्रोथ सब है, जो प्रोडक्ट में ग्रोथ है, ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं।
तो कॉस्ट पर केजी जो उनको बाकी ड्रम्स में पड़ता था वो आईबीसी में डिफरेंस आता है क्या?
हाँ उनको ज्यादा मिलता है ना पर केजी को, ज्यादा लगता है, लेकिन उनका वहां पर रिटर्न, उनका आईबीसी का वहां पर भेजूंगा और सामने कस्टमर को उसका फायदा मिलता है, इसलिए वो कॉस्ट बहुत सारा तो उनको बेस बेस बैठता है। वहां
ओके, क्या फायदा मिलता है सर कस्टमर को?
पर जाने के बाद वो आईबीसी उनकी सेल होती है ना खाली होने के बाद, उसका
आफ्टर
उसको आउट
एंटरिंग द
मिल जाता
आईबीसी दे कैन सेल द आईबीसी टू लोकल प्लेयर्स,
है, तो
सो
वो वहां
दैट
पर उसको पैसा मिल जाता है।
रिटर्न वैल्यू इज हायर देन ड्रम्स।
ओके ओके, ये बिजनेस पे सर व्हाट इज द रिटर्न ऑन कैपिटल दैट वी कैन जनरेट इन मीडियम टू लॉन्ग टर्म?
ये सर अभी बनाया नहीं हूं, मैं बताता हूँ देखकर।
ओके, एक आइडिया देते तो सही रहता है, मतलब समझ में आते।
3 साल में जनरली हो जाता
3 से 4 साल लगता है सर हमारे को रिटर्न लेने में।
ओके, गॉट इट, थैंक यू।
थैंक यू। इफ एनी वन विशेस टू आस्क अ क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड। We have the next question from Mr. Priyank Pare. Please go ahead.
या सॉरी फॉर आस्किंग अनदर टाइम सर, जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड ये जो यूनिट 7 में हम आईबीसी का नया जो कैपेसिटी लाने वाले हैं लाइन 2 का, उसका अप्रोक्सीमेटली कैपेक्स कितना होगा? कैन वी हैव एनी एस्टिमेट सर?
5 5 करोड़, 5 से 6 करोड़ के आसपास।
ओके, 5 to 6 करोड़ के आसपास। ओके, एंड उससे हम 5 टाइम्स टर्न्स देके चले तो 30 करोड़ जितना सेल जनरेट कर पाएंगे, कैन वी से दैट?
30 करोड़
अराउंड 10,000 यूनिट्स वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम न्यू लाइन।
ओके, 10,000 यूनिट्स पर मंथ।
तो
ओके, 10, ओके,
इट
सो 20,000।
बी अराउंड 70 75 करोड़
ओके, 70 75 करोड़। ओके
या
गुड,
बेसिकली बेसिस।
ओके गॉट इट गॉट इट। ओके या थैंक यू।
Thank you. Next question is from Mr. Rahul. Please go ahead. Rahul, you can unmute your line and please go ahead with your question.
या सो सर, मुझे ये क्वेश्चन है, आप अपनी सब जगह पे ऑलमोस्ट डबल कर रहे हो कैपेसिटी या 30-40% से बढ़ा रहे हो, तो आपके जो एक क्लाइंटल है, आर दे गिविंग सर्टेन इंडिकेशन या ऑर्डर्स या मतलब क्या बेसिस पे ये आप कैपेसिटी बढ़ा रहे हो? कैन यू गिव सर्टेन एस्टिमेशन या कुछ मतलब, और इसमें कैसा रहता है कि आप कोई काउंटर पार्टी के पास जाते हो आपका प्रोडक्ट लेके, तो कुछ जेस्टेशन पीरियड होते हैं, ट्रायल्स होते हैं या स्पेसिफिकेशंस में कितना टाइम लगता है?
में सब चीज होता है, लेकिन हम जो कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं वो इसी मेरी जो रनिंग प्लांट है, जो कस्टमर को माल जा रहा है उनको ही जा रहा है, तो हमको यदि कैपेसिटी उसके अंदर ऐड करते हैं तो मेरी कैपेसिटी जो पुरानी पूरी हो जाती है उसके बाद ऐड करता हूँ, तो उसी कस्टमर को कंटिन्यूड वो प्रोडक्शन जाने लगता है, तो उसके लिए मेरे को अप्रूवल कोई नहीं लेना पड़ता।
नो तो आपका मैं देख रहा हूँ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट कुछ 75% से लेके 80% के रेंज में है,
वो समझ लो वो
तो
जो कैपेसिटी है वो उतना ही ले पाएंगे, उससे ज्यादा आप उसको यूज भी नहीं कर सकते।
ये मैक्सिमम होता है। और एनी रीजन फॉर दिस?
उसके मोड चेंज होते हैं, कलर चेंज होता है, मशीन मेंटेनेंस है, ये सब रीजन
ओके
उतना ही आउटपुट मिलता है।
ओके और आपका ये जो पार्ट होते नए काउंटर पार्टी ऐड करना, तो वो किसके थ्रू होता है? मतलब
देखो
केवल
सब
मार्केटिंग टीम और वो सब है या
डायरेक्ट
कुछ?
होता है सर, सब डायरेक्ट है,
सब B2B बिजनेस,
B2B
वी डू
है ये।
डायरेक्ट मार्केटिंग विद टू आवर प्रोडक्ट्स विद आवर कस्टमर्स, सो वी डू डायरेक्ट इंटरेक्शन एवरी डे और मंथ ऑन मंथ बेसिस एज एंड व्हेन वी स्पीक टू आवर कस्टमर्स।
तो पास्ट 6 मंथ्स में आपने आफ्टर द आईपीओ कोई नए क्लाइंट्स ऐड किए हैं, और आपकी लिस्ट बता पाऊंगे जो आपके क्लाइंट्स हैं,
क्लाइंट
इफ यू कैन
उनको
डिस्क्लोज इट?
ही ज्यादा जा रहा है, अब कुछ बहुत से कस्टमर अभी, अब नाम तो प्लस
हाँ नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा था अगर, हाँ ठीक है वो तो मैं समझा, बट आप नए भी ऐड कर रहे हो या सिर्फ उनके एग्जिस्टिंग से ही आपको वॉल्यूम्स आने वाले हैं, आप ऐसे प्रेडिक्ट कर रहे हो?
टू कंटिन्यू विथ एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, सर्व एग्जिस्टिंग कस्टमर्स एंड कीप ऑन क्रिएटिंग न्यू कस्टमर्स एज एंड व्हेन, बिकॉज आवर टीम इज वेरी फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग न्यू कस्टमर्स ऑल्सो, इट इज नॉट
ओके
लाइक
okay.
वी
महीने में
वांट
दो
टू, वी हैव
चार
वन,
पांच कस्टमर नए ऐड होते ही है सर।
वी हैव 400+ कस्टमर्स नाउ इन आवर
और
बास्केट।
ये कस्टमर्स कितने स्टिकी होते हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपका ये एसेट कुछ ज्यादा केपेक्स करके नहीं हो जाता है, मतलब बहुत कम केपेक्स में आपके 5 to 6x एसेट टर्न है, तो कोई भी दूसरा प्लेयर आ जाएगा, तो ये स्टिकी कैसे होते कुछ नौ ये हाउ आर दीज प्लांट स्टिकिंग टू यू? कोई दूसरा प्राइस कम करके भी बेच सकता है वॉल्यूम गेम एंड ऑफ द डे?
सर प्राइस कम कर देने से नहीं कस्टमर चला जाता है, उसके लिए
ओके
तीन चीज देता हूँ मैं कस्टमर को, सर्विस देता हूँ, क्वालिटी देता हूँ, प्राइस देता हूँ। मैं प्राइस दूसरे से कम क्यों नहीं दे सकता हूँ? वो नए
ओके
तो आएंगे मेरे, मैं तो उससे 25 गुना ज्यादा बनाऊँ तो मेरी वाइफ कैपेसिटी ज्यादा है, मेरी कॉस्टिंग ज्यादा है, कम है, हर तरीके से मैं उससे कम कम रेट कॉस्टिंग में काम हो रहा है ना मेरे पास, तो मेरे कस्टमर को
ओके
जाने का छोड़ने का कारण क्या होगा?
ओके नहीं मैं देख रहा हूँ, मतलब मैं देख रहा हूँ कि आपका ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज मार्केट है, तो अनऑर्गेनाइज में बहुत लोग ऐसे कर सकते हैं, मतलब
टाइम मार्केट है साहब, अनऑर्गेनाइज जो लोग आते हैं उनका प्लांट साल 2 साल में बंद हो जाता है, नहीं चल पाता है,
ओके ओके
और नए आने वाले
ओके
पाते सरवाइव करते हैं।
हाँ ओके नहीं बस इस पे ही क्वेश्चन था, तो थैंक्स अ लॉट फॉर द आंसर्स।
थैंक यू। इफ एनीवन विशेस टू आस्क अ क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड।
हेलो
We have the next question from Mr. Nikhil Agarwal. Please go ahead.
सर, ये आईबीसी का मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस में क्या कॉम्प्लेक्सिटीज रहता है? इज देयर एनी मोट इन दैट आल्सो?
क्वालिटी सर उसमें
ओके
60 टाइप की आइटम लगती है, 60+ आइटम उसमें यूज करते हैं हम, आईबीसी बनाते हैं, तो सब सिस्टम बना हुआ है अपने, उस हिसाब को चेक करते हैं, उसके बाद उसको बना के मार्केट में
देर आर
देते हैं।
मोर देन 20 ऑपरेशन वी नीड टू गो थ्रू बिफोर प्रोड्यूसिंग वन आईबीसी, 60+ कंपोनेंट्स आर इन वन आईबीसी, सो 60 कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग फॉर 20 एवरी प्रोसेस इज इट्स कॉम्प्लेक्स इन इटसेल्फ, अचीविंग 100% एक्यूरेसी देयर, सो इट एवरी प्रोसेस हैज अ चैलेंज इन, तो अचीविंग आफ्टर यू कंप्लीट ऑल द ऑप्शन यू विल गेट वन आईबीसी,
ओके
इट इज दैट कॉम्प्लेक्स एंड फॉर अस इट इज नॉट कॉम्प्लेक्स, फॉर अदर्स इट मे बी अ कॉम्प्लेक्स।
सो व्हाइल डूइंग एनी केपेक्स, सो इज द प्लांट रेडीली अवेलेबल इन द मार्केट और यू हैव टू डिजाइन ऑल द 20 ऑपरेशंस सेपरेटली एंड असेंबल टुगेदर?
दैट ऑल द 20 ऑपरेशंस वी डू इन वन प्लांट ओनली एंड देर आर फ्यू आइटम्स वी आउटसोर्स ऑल्सो, दैट एज आई एक्सप्लेन इन आवर प्रेजेंटेशन वी आर डूइंग सम बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑल्सो,
So sooner or down the line,
okay.
Sir, is the biggest competitor Time Technoplast for us? How is the product different from theirs, the IBC product?
इसलिए हम सरवाइव कर रहे हैं, उनको छोड़कर लोग मेरे पास आते
हैं। डायमेंशन वाइज इट इज स्टैंडर्ड मॉडल का मैच द एक्सपोर्ट कंटेनर्स एंड डिजाइन वाइज इट इज डिफरेंट आर देयर्स इज डिफरेंट एंड आवर्स इज डिफरेंट क्वालिटी प्राइस एंड सर्विस व्हाट वी आर गिविंग टू द कस्टमर्स एंड व्हाट दे आर गिविंग बेस्ड ऑन दैट वी हैव बीन सर्विंग द मार्केट
Thank you.
Thank you. If anyone further wishes to ask a question, please raise your hand. Since we have no further questions, I'd like to hand over the call to the management for closing remarks.
Thank you, everyone.
With this, I would like to say that we have been consistently growing and our focus will be remained, as I said in our earlier presentation, we'll keep on expanding our portfolio with respect to the products, with respect to the capacity, and hopefully in the next quarter, we'll give a good results as expected. Thank you for this. Thanks for the phone call on today. Thank you so much.
Thank you, everyone. Happy Diwali to everyone.
Happy Diwali to you. Happy Diwali.